आर्य ओबरॉय मेंशन से वापस अपने घर लौट आया था। वो घर लौटा तब तक रात के 11:30 बज रहे थे। वहां कुछ नहीं खाने की वजह से उसे भूख लगी थी। पीटर अंकल को भी उसने खाना लाने से मना कर दिया था। भूख लगने की वजह से आर्य खुद के लिए खाना बना रहा था। इससे अच्छा रास्ते में आते हुए किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ले लेता। अब कोई आसान सी डिश भी समझ नहीं आ रही जो 10-15 मिनट में बना सकूं। आर्य किचन में खड़ा इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। ध्वनि, वो किस दिन काम आएगी, उसे कॉल करके पूछता हूँ ताकि मेरी हेल्प कर सके। आर्य ने ध्वनि को कॉल मिलाया, पर लास्ट टाइम में शिवी का नंबर होने की वजह से गलती से ध्वनि के बजाय शिवी के पास कॉल चला गया। दूसरी तरफ शिवी भी सोने जा रही थी। उसने अचानक आर्य का कॉल देखा तो वो भी हड़बड़ा गई। ये इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रहा है, कहीं इसे मेरा सच तो पता नहीं चल गया। शिवी ने उसका कॉल पिक किया और कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है? शिवी की आवाज़ सुनकर आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फ़ोन हाथ में पकड़ा तो कॉल शिवी को चला गया था। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रहा था और गलती से तुम्हें लग गया। मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी होगी ना? ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं सोने जा रही थी। वैसे तुम इतनी रात को अपनी फ्रेंड को क्यों कॉल कर रहे थे, सब ठीक तो है ना? शिवी ने पूछा। आर्य किचन प्लेटफॉर्म पर बैठकर शिवी से बात करने लगा। उसने जवाब में कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, एक्चुअली मैं बाहर था और मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। अब मुझे भूख लग रही थी तो सोचा उससे कोई ऐसी रेसिपी पूछ लूँ जो आसानी से बन जाए। आर्य की बात सुनकर शिवी खिलखिलाकर हंसी। तुम सच में अजीब हो, तुम कुछ बनाकर खाओगे, इससे अच्छा कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो। काश मैं कर सकता, बोलते हुए आर्य ने इधर उधर घर की तरफ देखा। एली का घर शहर से काफ़ी दूर बना हुआ था। वो जिस इलाके में मौजूद था वहाँ लेट नाइट डिलीवरी नहीं होती थी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जंगल में रहते हो, आर्य से बात करते हुए शिवी की नींद भी उड़ चुकी थी। कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा तुम्हें कुकिंग आती है, अगर तुम मेरी हेल्प कर सको तो, आर्य ने हिचकते हुए पूछा। हाँ आती है, और वैसे भी मिडनाइट फूड क्रेविंग किसे नहीं होती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी तरह किसी को कॉल करके उसे रेसिपी नहीं पूछती। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। शिवी आर्य को जानबूझकर परेशान कर रही थी। तो तुम क्या बनाकर खाती हो, आर्य ने उत्सुकता से पूछा। कुछ भी, मुझे कौन सी अपनी डिश किसी मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में देनी है, कुछ पैकेज्ड फूड भी चल जाता है। 2 मिनट्स नूडल्स बना लो या ऑमलेट? बिल्कुल नहीं, ऑमलेट रात के हिसाब से सही नहीं, बाकी सब अनहेल्दी है। कुछ और अच्छा सा बताओ जो आसान हो और 10 से 15 मिनट में पक भी जाए। आर्य ने फ़ोन स्पीकर पर किया और एप्रन बांधने लगा। ओके तो कपकेक बना लो या चपाती, पराठा, राइस। शिवी जिस भी खाने का नाम ले रही थी, आर्य बस ना बोले जा रहा था। उसके बार बार ना कहने पर शिवी इरिटेट होकर बोली, बाबा रे कितने नखरे हैं तुम्हारे, इतनी नानुकूर तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं करता। शिवी की बात सुनकर आर्य हल्का सा हंसा और बोला, ऐसा समझ लो मैं एक छोटा बच्चा हूँ जिसे इस वक्त कुछ अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, अब मेरी हेल्प करो। ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हारे वहाँ ओवन है, शिवी ने पूछा। हाँ है, अब बताओ आगे क्या करना है। शिवी के कहते ही आर्य ने तुरंत ओवन में से ट्रे निकाली। गुड, पास्ता पता चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, मेरा फेवरेट है। आर्य ने सामने की अलमारी से पास्ता बॉक्स निकाला और ट्रे में डालने लगा। शिवी उसे जो जो इंग्रेडिएंट्स बता रही थी वो उसमें डाल रहा था। सब डालने के बाद उसने उसे ओवन में पकने के लिए रख दिया। सब हो गया है, अब बताओ क्या करना है। अब अपने आसपास देखो, वहाँ तुम्हें कोई चेयर दिखाई दे रही होगी, उस पर 10 मिनट के लिए रिलैक्स करो, 10 मिनट बाद तुम्हारा मील रेडी है, शिवी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सो मच, माना लाइफ में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, पर इतना वियर्ड होगा ये कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थिंक कि मैं आधी रात को तुम्हें कॉल करके रेसिपी पूछूंगा। हाँ मैंने भी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सच कहूँ तो इंडियाना में जो भी हुआ उसके बाद से मैं तुमसे छुपती फिर रही थी, शिवी ने बताया। तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो तुम क्या मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, शिवी ने हंसकर पूछा। आर्य सिंह ओबरॉय, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढ रहे थे ताकि ये बता सको कि तुमने वो डील फाइनल कर ली है। तुम मेरा हारा हुआ चेहरा देखना चाहते थे, यानी तुम्हें सब कुछ पता था और तुम जानबूझकर मुझसे छुपा रही थी। जी बिल्कुल, शिवी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। अच्छा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है अब, तुमने मुझे बता दिया तुमने वो डील कर ली है, शायद अब मुझे तुमसे छुपना ना पड़े। हाँ तुम्हें मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुमने कुछ ऐसा ना किया हो जिससे मुझे हर्ट हो। आर्य की बात सुनकर शिवी चुप हो गई। उसने आगे कहा, उस दिन तुम आराम से जाकर किसी और चेयर पर बैठ सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया और मुझसे बहस करने लगी, ना जाने मुझे क्या क्या नहीं बोल दिया। मेरे डैड को भी बीच में ले आई, मेरे डैड जिनसे मैं नफरत,
अपने पापा का जिक्र आते ही आर्या ने बात को अधूरा छोड़ दिया। वो बातों बातों में शिवी को अपने और उनके रिश्ते के बारे में बता चुका था। उसने खुद को जल्दी से सामान्य किया और आगे कहा, मेरा पास्ता बन गया, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। आर्या कॉल डिस्कनेक्ट करता उससे पहले शिवी जल्दी से बोली, प्लीज फोन मत कट करना। तुम ऐसे मोमेंट पर फोन कट कर रहे हो जिसके बाद चाहकर भी हम दोनों वापस नहीं मिल पाएंगे। पिछली बार मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा था, इस बार तुम्हें होगा। शिवी की बात सुनकर आर्या रुक गया। उसे खुद को कॉल न करने पर हैरानी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे दोबारा क्यों मिलना चाहता हूँ, मैं ये कॉल कट नहीं कर सकता। बिल्कुल, शिवी उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। चलो अपना पास्ता बाहर निकालो वरना वो जल जाएगा। जरूरी नहीं होता सबकी लाइफ हैप्पी हो और सब अपने मॉम डैड से प्यार करें। हाँ, हम नफरत नहीं कर सकते, पर कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शिवी आर्या को समझाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूम रहा था जिनके साथ कुछ वक्त से उसका रिश्ता पूरी तरह बिगड़ गया था। आर्या ने उसकी बात मान ली, वो चुपचाप खाना खा रहा था तो वहीं शिवी उसे अपनी तरफ से समझा रही थी। आर्या बस हाँ या ना में ही जवाब दे रहा था। तुम्हें पता है मैं ज्यादा लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करती, फैमिली लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं, पर मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे और मेरी मॉम के बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। और तुम्हारे डैड? आर्या ने पूछा। वो अब हमारे साथ नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, अब भी करती हूँ, पर वो अब हमारे साथ नहीं रहते। मम्मा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं और मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं वहीं अटकी हुई हूँ। कुछ ऐसी ही हालत मेरी है, मैं जब 8 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। तुम्हारी मॉम की तरह मेरे डैड भी आगे बढ़ गए और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। मैं उस टाइम इतना मैच्योर नहीं था कि उनके डिसीजन को समझ पाता, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो जो भी कर रहे हैं मुझे सब समझ आता है। पर वो क्यों कर रहे हैं मुझे इसका रीजन नहीं समझ आता, वो क्यों हम सबको तकलीफ देना चाहते हैं। आज से पहले आर्या ने मुश्किल से ही किसी से इतना खुलकर बात की होगी, उसके दिल में क्या था वो ध्वनि को भी नहीं पता था।
देखो तुम दुखी मत हो, हम दोनों की लाइफ एक जैसी है, तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। तुम्हारी मॉम यहाँ होती तो उन्हें भी तुम पर प्राउड होता। तुमने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, अपना नाम बनाया, उन सबसे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। आर्या को काफी राहत महसूस हो रही थी। तो फिर डैड और मेरी फैमिली, वो कहीं ना कहीं आज भी मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हाँ, मेरी मम्मा भी पूरा इंटरफेयर करती है, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे शादी करवाने तक की धमकी दे दी। बट यू नो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिवी किसी से नहीं डरती और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवी ने सख्त आवाज में कहा, तुम भी यही करो, ऐसे तो बड़ा एटीट्यूड दिखाते रहते हो। इस बार तुम्हारे घर वाले मिले तो उन्हें भी अपना यही एटीट्यूड दिखाना, जैसे मुझे पैसों का घमंड दिखाया था वैसे उन्हें भी दिखाना। शिवी की बात सुनकर आर्या हंसने लगा। अच्छा, मैंने तो अपने दम पर बहुत कुछ किया है, क्या तुमने भी कुछ ऐसा किया है जिस पर उन्हें प्राउड होना चाहिए? I mean, जरूरी नहीं कि तुम कुछ करो, लेकिन कुछ तो करती होगी ना, तुमने मुझे बताया था तुम जॉब करती हो। आर्या की बात सुनकर शिवी की आंखें बड़ी हो गईं। एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो अब उसका बॉस है, उसे अपने बारे में ज्यादा डिटेल्स देना भविष्य में उसके लिए ही खतरा बन सकता था। मैं कुछ नहीं करती, मैं उस दिन इंटरव्यू देने के लिए गई थी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, शिवी ने हड़बड़ाकर कहा। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी कंपनी है, तुम कहो तो मैं बात करके देखूं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह अपने दम पर कुछ करूंगी। अच्छा, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी मैंने काफी देर तक तुमसे बात कर ली, हम तो अब तक एक दूसरे के दोस्त भी नहीं। आर्या आगे कुछ कह पाता उससे पहले शिवी ने सोने का बहाना बनाकर कॉल कट कर दिया। उससे बात करने के बाद उसने रोनी सूरत बनाई और कहा, ये मैं क्या करने जा रही थी, अगर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसे पता चल गया मैं कौन हूँ तो फिर से गलत समझने लगेगा। नहीं शिवी, तुम उसके करीब नहीं जा सकती। हाँ ठीक है, वो अकड़ू नहीं है, अच्छा है, पर फिर भी उससे दूर रहना है। शिवी आर्या को भूलकर सोने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं उसने उसके दिल में जगह बना ही ली थी। वहीं उससे अचानक कॉल कट करने पर आर्या हैरान था, ये लड़की ना बिल्कुल पागल है, मैंने इसे सोने का कहा तब मेरी हेल्प करने को तैयार थी और अब जब मैं इससे बात करना चाहता था तो कॉल कट कर दिया। वैसे कुछ भी हो, इसकी बातें और वाइब काफी पॉजिटिव है, ये मुझे बहुत हेल्प कर सकती है, तो आज से तुम मेरी थेरेपिस्ट हुई, मिस शिवी वॉटसन। खाना खाने के बाद आर्या सोने चला गया। इतने दिनों के बाद वो काफी आराम से सो पा रहा था, जहाँ पुरानी बातें और यादें उसे परेशान नहीं कर रही थी। अगले दिन शिवी और आर्या दोनों ही ऑफिस पहुंचे, इत्तेफाक से दोनों एक ही लिफ्ट में थे। शिवी ने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था। शिवी ने सोचा, आई होप तुम अपने पास्ट और प्रॉब्लम से आगे बढ़ सको और एक नॉर्मल लाइफ बिता सको। अब समझ आया कि तुम इतना एटीट्यूड में क्यों रहते हो, तुम अच्छे हो पर तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे नहीं, जिसका असर तुम पर हो रहा है। क्यों ना सुबह सुबह अपनी थेरेपिस्ट से बात कर ली जाए, शायद उससे बात करने के बाद ऑफिस का दिन अच्छा बीते। आर्या के मन में भी शिवी की बातें चल रही थी, उसके बारे में सोचकर आर्या ने अपना मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। आर्या के कॉल करने पर लिफ्ट में उसके पास खड़ी शिवी का मोबाइल बजा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था।